अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए मोहब्बत के दरवाजे खोल दिए। और आप देखिए कि इबादत कहते हैं मोहब्बत के साथ इताअत करने को। और अल्लाह ताला के लिए जो लफ्ज आता है ना इलाह, यहाँ रब आया है लेकिन पीछे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह लफ्ज भी जो होता है ना किसी के साथ मोहब्बत की शिद्दत है। आपको तो अरबी जुबान में मोहब्बत के 10 दर्जे हैं और इलाह बनाना किसी को 9वां दर्जा होता है। आयतुल कुर्सी में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बाकी भी। एक्सट्रीम लव, जिस तरह कहते हैं ना दिल दिमाग पे, इसके बाद वाला जो दर्जा है ना वो ठीक नहीं होता, जिसको आप कहते हैं अगले के हवास पे ही छाए जाना। यानी किसी से मोहब्बत की एक्सट्रीम, उसको इलाह बना लेना। और पीछे आपको शायद बताया था कि नहीं कि इलाह और अल इलाह में क्या फर्क है। इलाह कोई भी बन जाता है। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू, ख्वाहिश भी खुदा बन के बैठी होती है, लेकिन अल इलाह यानी अल्लाह कोई नहीं बन सकता। अलूहियत का दर्जा सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला को दिया जाता है। अच्छा थोड़ा सा और भी रब देखिएगा, अभी भी इस लफ्ज से दिल नहीं भर रहा। सूरत फातिहा में भी ये लफ्ज आया था, मैंने अभी जिक्र भी किया, नाबुदु। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, मैं कह रही हूं अल्लाह से, इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरे गुलाम है। यहाँ 23 में क्या आ रहा है? या अय्युहन्नासु उबुदू, ये है उसका जवाब। मुकालमा यहाँ के पूरा हुआ, वहां आपने कहा अल्लाह ताला मैं आपकी बंदी हूँ, अल्लाह ताला कहते रियली सो उबुदू रब्बकुम, यानी इसका आप एक छोटा सा जेम बना दें फिर वो करो जिसका दावा करते हो। दावा क्या था? या का नाबुदू, यहाँ कह रहे सो उबुदू, तो फिर दावे की दलील दे दो, कर लो, ये है वो है। फिर इसी तरह से आप एक और खूबसूरत चीज देखिएगा कि सूरत फातिहा में नाबुदू का लफ्ज जब आया, या का नाबुदू, फिर उसके बाद दो गिरोहों का जिक्र आया, अल मगदू और अद्दालीन। यहां किसका जिक्र है? यहां तरतीब पलट गई है। पीछे हम मुत्तकी, काफिर और मुनाफिक, यानी इन दोनों को एक भी जोड़ लें उसके बाद अल्लाह के बंदे बनने की बात है। सारी बात का खुलासा कर दूं, या युन्ना सो बुदू रब्बकुम, आपने रब की मान लो, मनमानियां छोड़ दो, बड़े मत बनो। याद रखिए हमारे दीन में फलसफा नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है हमारा दीन, बड़े बड़े अफकार का नाम नहीं है, किसी के मुजाहिदों और मुशाहिदों और मुराकबों का नाम दीन नहीं है। दीन है अमल करो, ए मलू, प्रैक्टिकल गाइड है, प्रैक्टिकल रिलीजन है। चलिए रब्बकुम को थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, पीछे भी गुजर गया। सूरह फातिहा में हमने क्या पढ़ा? अपने जहन को पीछे ले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, ठीक है, वहां क्या थी? अल्लाह की तारीफ, फिर कहा रब्बुल आलमीन, यहां क्या है? या अय्युहन्नासु उबुदू, और उसके बाद कहा रब्बकुमुल्लज़ी, बिल्कुल वही अंदाज है, अल्लाह की एक सिफत और अल्लाह तआला की एक बात। अल्लाह आपका मेरा अपना ताल्लुक जोड़ता है। असल में रब्बकुमुल्लज़ी खलकक़ुम कहकर ये बता दिया कि तुम अपने रब के बन जाओ। देखिए अल्लाह ताला के हर नाम के साथ ना हमारा रब्त है, वो राज़िक़ है तो हम मरज़ूक़ हैं, वो खालिक है तो हम मखलूक हैं, वो रब है तो हम अब्द हैं। सिर्फ एक नाम का जोड़ कोई नहीं है और वो इलाह है। और गुलाम जो हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं ना गुलामी वाला, जिसको आप इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं, वो हक नहीं अदा होता बंदे की गुलामी से। कभी आपने किसी की गुलामी की कोई बात सुनी हो? कभी आपने देखा कि कोई गुलाम अपने आका की तारीफ करे? कभी भी नहीं करते। अपनी मासियों को देख लीजिए, घर बैठ के बेगमात की बातें कर रही होती हैं। अल्लाह ताला का गुलाम बनकर बंदा क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आप देखिए कभी कोई आका अपने गुलाम को ये कहता है, तुम्हारी मर्जी है तुम मेरे गुलाम रहो, तुम्हारी मर्जी है ना रहो, चॉइस तो नहीं देता, कोई चॉइस दे तो कोई गुलाम गुलाम रहे? अल्लाह क्या कहता है सूरह दहर में आप पढ़ेंगे, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब मुझे रखना है तो रख लो नहीं तो छोड़ दो। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है, सिर्फ मिसाल देने के लिए, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, एक शौहर अपनी बीवी के साथ शादी के 2-4 सालों में उसको दिखा देता है कि मैं बेहतरीन शौहर हूँ, और फिर उसको किसी मौके पे के चॉइस है, मेरे साथ रहती हो तो रह लो नहीं तो छोड़ दो, मैं छोड़ देता हूँ कहीं और चली जाओ। कौन सी बीवी छोड़ेगी? जिसकी जान फंसी हुई है वो कहेगी जल्दी करो। लेकिन जिसको अपने शौहर से सब मिल गया जो चाहिए था वो राजी है, वो कहेगी मैं आप छोड़ेंगे मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये दुनिया के रिश्ते हैं, अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं टूटता। हमें कोई छोड़ दे तो हम उसको कहेंगे चलो सब बेनिफिट्स वापस ले लो। अल्लाह को छोड़े हुए बहुत सारे लोग आज फिर भी नेमते पा रहे हैं क्योंकि वो रहीम है। अल्लज़ी खलक़कुम। अब आगे चलते हैं। दुनिया में दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं लोगों को रब का बंदा बनने में। लिख लें फिर मैं अगला हिस्सा बोलती हूँ। नंबर एक, आबा परस्ती। बाप दादा के वक्त से ये हो रहा है। हमारे तो खानदान में भी कभी किसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और सो ऑन। और दूसरी होती है नेचर वर्शिप, कायनात को देखना। यानी बाप दादा का नाम लेकर लोग अल्लाह के कामों से रुकते हैं। आज भी ऐसे ही है, सच्ची पूछे माने ना माने, पहले भी लोग ऐसे ही थे। अल्लाह ने इस एक जुमले में दोनों की बात कर दी कि रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, तुमसे पहलों को भी किया। ये मिन कब्लिकुम में क्या छुपा हुआ है कि तुम्हारे बाप दादा जिनका नाम लेकर तुम अल्लाह के हुक्मों से पीछे रहते हो या अल्लाह के दीन को बदलते हो, दीन में बिदात शामिल करते हो, मनमाने इजाफे करते हो, वो किसके बंदे थे? बात समझ गए? आबा परस्ती नहीं करनी, बल्कि आबा ने जिसको पूजा तुमने भी उसको पूजना है। यहां बता दिया कि मखलूक को अगर खालिक ही की बंदगी करनी चाहिए, मखलूक की नहीं करनी चाहिए। पूरा वो शिर्क याद कीजिए जो पहले दौर में हुआ, इंसानों का ही हुआ ना। लात मनात उज्जा यगूस, सब इंसान थे, इंसानों को लोगों ने बना दिया। तो क्या पता चला कि रब वो होता है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। लम यलित वलम यूलद। और मिन कबलिकुम कहकर ये भी बता दिया कि तुमसे पिछले सारे के सारे, यानी तुमसे पहले जितने लोग भी थे, वो सब को उसने पैदा किया। चलिए बात थोड़ी समझ आ गई, इतनी बहुत है, अभी और नहीं समझते, क्यों करूं इबादत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपका सवाल है इस आयत में, मैं इबादत क्यों करूं? नऊज़ुबिल्ला सुम्मा नऊज़ुबिल्ला, क्या अल्लाह को जरूरत है मेरी इबादत की? अल्लाह की कोई कुर्सी कमजोर हो जाएगी मेरी इबादत ना किए हुए? नहीं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी बेनियाजी है। तुम बचोगे, मेरा क्या जाता है? इबादत की बात करके बता दिया, जिंदगी का मकसद तो यही है। सूरह ज़ारियात आयत 56 में भी कहा, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मेरी इबादत करो ताकि बच जाओ। तुम्हें पैदा ही इबादत के लिए किया, तुम्हारा रब भी है। तकवा किस चीज से? यहां पहले लफ्ज पे गौर करवाऊं कि पहले मफहूम पे गौर कराऊं? लफ्ज तत्तकून, ये दो ताएं क्यों आ गई भाई? देखिए अरबी जुबान में लिखिए दो तीन लफ्ज, जरा थोड़े से लफ्जों को पहले खोल लेते हैं। लफ्ज होता है तकवा, उर्दू में भी बोलते हैं हम, वही लफ्ज है। अगर आप लिखेंगे ना तकून, यानी ये पहली ता हटा दें, तत्ताकून, तकून कह दें, तो इसका मानी क्या होगा? यू प्रोटेक्ट, तुम बचो, यानी आपने खुद बचना है। अच्छा, अगर आप कह दें तुकाउन, ता पे पेश करके काफ पे जबर कर दें, तुकाउन है तो तुम बच गए, यू हैव सेव्ड। अरबी जुबान में इत्तका इससे पहले अलिफ लगा है असल में, तुम अपने आप को बचाने के असबाब पैदा करो। यानी मैं सारी बात आसान करूं आपके लिए, इसमें एक लाजिम और मुतद्दी चीज होती है ग्रामर में, उसका फर्क है। एक होता है करना, एक होता है कराना, खाना दूसरा लफ्ज होता है खिलाना, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो ता है ना एक तकवा से पहले, तकून से पहले की ता बता रही है कि तुम खुद को बचाने के असबाब पैदा करो। बात समझ आ गई? सिर्फ दूसरों से दुआएं मंगवाने से तुम्हें में तकवा नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तकवा तो करेंगे, होगा तो फिर ही होगा, फिर ये सारा कुछ तुम्हारे लिए आसान होगा ना। और तकवा किस चीज से? तागूत से। सूरत नहल आयत 36 में आता है, वलकद बस नफी कुल्ली उम्मत रसूलन अनेबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। वहां साफ लिखा है कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बच जाओ। चलिए ये भी बात समझ आ गई, किस चीज से बचना है? नंबर एक, दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ, और आखरत में जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाओ। बात वाज़े? तकवा किस चीज से? दुनिया में नाफरमानी के कामों से, اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ، غلط روی سے بچ جاؤ. امام مجاہد کہتے ہیں تم فرما بردار بن جاؤ. کون سا رب؟ اب دلائل آگے. اب اگلے حصے کو ذرا سا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. پہلے کہا عبادت کرو، پھر بتا دیا کیوں کرو، تاکہ تقویٰ حاصل ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کروں؟ آیت 22 سے پہلے کوسچن لکھیے گا کہ صرف اللہ کی عبادت کیوں کروں. تو اب میں ذرا پڑھتی جاؤں گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اکٹھی کر کے پھر جو باتیں اس میں ضرورت کی ہوں گی اس کو مینشن کریں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یہ ہے اس کا پہلا احسان. نمبر 1-2 تو لکھیے. سوال میں تھوڑا سا واضح کر دیتی ہوں، اللہ کی عبادت کن وجوہات پہ کروں؟ تو نمبر 1, 1, 2, 3 اپنے نوٹس میں بھی ایسے ہی لکھا کریں سوال کے نیچے، پہلا دوسرا تیسرا کر کے. پہلی ریزن، دا فرسٹ ریزن ٹو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ از الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. کیسی ہے یہ زمین؟ یہاں جو جال ہے نا، خلقہ کے معنی میں کسی چیز کو بنانا، اور فراشا فرش کو کہتے ہیں، ہموار، مناسب ہے، نہ بہت سخت نہ بہت نرم. آپ دیکھیں بستر بہت سخت ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، بہت نرم ہو پھر بھی نہیں آتی. گویا کہ پوری دنیا ایک بیڈ ہے جس پہ انسان کروٹیں لیتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. بس سما بنا، اچھا یہ جو ارض ہے نا، ارض، ارض جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اور عربی میں پڑھیں گے تو ارد، یہ وہی ہے جس سے انگلش کا لفظ ارتھ بنا. آپ کہیں گے ہیں یہ کس نے کہا آپ کو عربی سے انگلش بنی؟ جی، انگلش زبان نہیں ہے، عربی پرانی ہے. ارض کو انگلش میں ارتھ کہتے ہیں. دی ارتھ کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بھی ہے اگر آپ بی بی سی کے نام پہ انہوں نے بنائی ہوئی، بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں کائنات کی بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں. تو زمین کو فرش بنایا، والسماء بنان، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اب یہ کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ چلیے آپ کو تو اس کی قدر ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ پروٹیکٹڈ ہے نا گھروں میں. جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بدو لوگ تھے. آپ کو پتا کہ ان کے گھر نہیں تھے ہماری طرح کے گھروں کی طرح، چلتے جاتے تھے، جہاں رات ہوتی تھی کوئی ایک پتلی سی چادر یا چھال ہے کھجوروں کی، کھال ہے جانوروں کی، اس کو بچھاتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، اور اوپر چھت صرف آسمان ہی کی ہوتی تھی، نیچے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پوری کائنات کو ان لوگوں کا گھر دکھا دیا جن کا کوئی گھر ہی نہیں، جہاں رات ہوئی چل پڑے، جہاں صبح ہوئی چلے. ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ گھر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. تبھی تو آپ کبھی مکہ میں جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے رہنے کی جگہ مدینہ میں دیکھیں، حجرے چھوٹے چھوٹے، آپ کہتے ہیں کیسے رہتے ہیں؟ یہ وہ جانتا ہے جو سفر پہ رہتا ہے. جب آپ کے قدم گھر میں آتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. یہ گھر جیسی نعمت، آپ کو عام حالات میں اپنا گھر ذرا نہیں اچھا لگتا. آپ ذرا سفر کریں تو صحیح، ادھر سے ادھر گھومیں، سونے جیسی جگہوں پہ رہیں، اور آپ کی جتنی مرضی خدمتیں ہوں، لیکن جو گھر ہوتا ہے نا وہ گھر ہوتا ہے. میں کہتی ہوں گھروں میں رہ کر بھی کوئی بندہ اگر اپنے روٹین کو اللہ کے حکم کی نہ کر سکے تو اس سے زیادہ نہ شکرہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، دوسری وجہ آسمان کو چھت بنایا. ذرا امیجن تو کریے اگر چھت نہ ہوتی، کیسے ہی ہوتی؟ کبھی بہت دھند ہو اور غبار چھایا ہو تو دل پہ بوجھ نہیں پڑتا، ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ نے کتنے پیارے ستارے ٹانک دیے اس رات کے اوپر، آسمان کو سجا دیا. تیسرا انعام، تیسری وجہ، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی نازل کیا. چوتھا انعام، فخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے نکالا پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے. لکم، نوٹ کر رہے اس میں، تم آپ کا پیار ہے اللہ کے ساتھ اس میں، اور اللہ کو آپ سے محبت ہے. سب کچھ انسان تیرے لیے پیدا کہ من الثمرات. آپ دیکھیے ایک لفظ پھل ہے نا، ثمرات، ثمرتن کی جمع، کسی چیز کا ایڈیبل حصہ، کھانے کے قابل حصہ. فروٹ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظ فواقہ. عربی زبان میں پھلوں کے لیے مختلف لفظ آتے ہیں. پھل کے لیے لفظ ایک آپ کو قرآن پاک میں بھی ملے گا، جس کو کہتے ہیں فاقہ، جمع ہے فواقہ. یہاں پھر یہ کیوں نہیں آ گیا کہ تمہارے لیے پیدا کیے فواقہ؟ نہیں، फवाकिहा जो होता है ना वो सिर्फ फ्रूट के मानों में आता है, जिसको हम फ्रूट कहते हैं, यहां आप शायद फ्रूक्ट कहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन समरा क्या होता है? मेहनत का समर, ईमानदारी का समरा, औलाद को भी समरा कहते हैं। फल यानी किसी इंसान की मेहनतों का फल होता है। यहां कह दिया कि तुम्हारे लिए हर किस्म के फल पैदा किए, तो फल में फिर खेतियां भी आ गई, ये भी लिख लें आप। ये ना कि ये सिर्फ अमरूद और आम और अनार है, बल्कि जो किसान बीज जमीन में डालता है उसमें से हर चीज मट्टी पूरी ईमानदारी से वापस करती है, एक के बदले 700 भी दे देती है। कर सकते हैं हम आप? कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, यकीन करें। एक रस भरे सेब को दरख्त से तोड़ के खाना, ऐसे लगता है अल्लाह से बातें करना है। ये कहां से जूस आ गया, ये सुर्ख रंग कहां से आ गया, ये अंदर से पीला कैसे हो गया, ये काला बीज कितना प्यारा अंदर टिका हुआ है, फिर उस बीज के बाहर एक हल्का सा खोल कितना प्यारा बना हुआ है। ऐसे लगता है जैसे किसी चीज को हाथ में ले लिया। ये सब कुछ उस मालिक के काम है। जिसने अगर मजा नहीं चखा ना तो जरूर चखें। आजकल बहुत सारे फलों के सीजन लगे हुए, जाइए कभी छलियां तोड़ें, कभी आप आलू बुखारे तोड़ें, आपको महसूस होगा इस बात से कि अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या कुछ आपके मेरे लिए रख दिया। फिर इसी तरह से आप देखिए, ये सब कुछ करके कहा फला तजलुलिल्लाहि अंदादन, फिर तुम अल्लाह का कोई शरीक ना बनाना। वन तुम तालमून, और तुम जानते हो। अच्छा जी, ये फला तजलुल ये भी कह दिया, फलों की बात कर दी। एक फल के ऊपर गौर करें ना, रंग भरक, रंग भी खूबसूरत है ना, जायका भी खूबसूरत, खुशबू भी खूबसूरत, फिर उसको जो रैप किया हुआ। कभी आपने संतरे को छीला हाथ से, ऐसे अंदर से गुदा निकल के बाहर आ जाता है। क्या क्या मालिक की बातें हैं। आप देखिए, क्या हमारी जिंदगी बदमजा खानों से नहीं चल सकती थी? कभी अल्लाह ना करे किसी को कोई आर्टिफिशियल फूड लगे, लेकिन आपके घरों में भी ऐसे कोई ना कोई बीमार इधर उधर होंगे कि जिनके नाली लग जाती है फूड की, पाउच एक लगा देते हैं फिर कतरा कतरा उसमें से टपकता है। कभी आप उस फूड की थैली का एक कतरा चख के तो देखें, उबकाइयां आएंगी, वॉमिट हो जाएगी आपको, बीमारों को लगता है ऐसा, लेकिन इंसान सरवाइव कर देता है। कई लोग अपना, कई लोग एक्सपीरियंस शो करते हैं, फिर ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक महीना कुछ खाना नहीं था, स्टमक अपसेट था, ये था वो था, साल लग गया, बस यही कुछ उल्टी सुलटी चीजें देते रहे। गुजारा तो होता है। अल्लाह ने आपको मुझे ऑरेंज क्यों दिए? एक जुमला लिखूंगी, ये जैम बनाए इस बारे का। अल्लाह ने मुझे आपको बेयर मिनिमम पे नहीं रखा। बेयर मिनिमम कहते हैं कम से कम, कम से कम पे नहीं रखा, बल्कि भड़के दिया। हमसे भी यही मतलूब है। तुम भी तो बेयर मिनिमम इबादत ना करो। तुम मेरे लिए क्या देते हो? जहां कोई नहीं होता, चलो आज चलते हैं, आज कुछ नहीं है तो पकड़ लेते हैं अल्लाह का दीन, चलो कर लेते हैं। या तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? अल्लाह की जात, अल्लाह का नाम, अल्लाह की बातें। कितनी कुर्बानियां देते हो इस दीन के लिए? कब मुस्कुराते हो अपनी तकलीफ के बावजूद इस किताब को थाम के? सारी जिंदगी मजबूर रह के दुनिया से जाओगे? तुम्हारी जिंदगी में क्यों वो दिन नहीं आ रहा अभी तक कि तुम मुस्कुरा दो जिस वक्त बड़ी मुश्किल आ जाए? क्या जाने का तो मजा ही बड़ा है। आज की नमाज ने तो लज्जत ही बड़ी देनी है। हाथ नहीं कांप जाता बंदे का अपना उजर लिखते हुए? उसने तो इतना कुछ दे दिया। तुम भी तो बेहतरीन अमल दो। फिर आप देखिए हम खाते कैसे हैं। आज जाके सिर्फ अपने किचन की कैबिनेट को देखिएगा, बेहतरीन प्लेटें, चम्मच, ग्लास और डोंगे, डिशें। जानवर कहां से खाते हैं? खाते क्या हैं और उठाते कहां से? जमीन से। मेरे आपके सामने जमीन पर रखी होती रोटियां खाओ, चलो जान छोड़ो। इतनी इज्जत दी उस मालिक ने मुझे आपको कि तुम भी तो काम करो, तुम भी तो इस अपने हक को पहचानो तो सही। और आप देखिए कि फल के लिए अरबी जुबान में चार लफ्ज आते हैं, अपनी जगह पे उसकी तरतीब बताऊंगी, यहां सिर्फ नाम लिखवाऊंगी आपको। समर, फाकेहतुन, जना और उकुल। बदा मैंने आपको बता दिया, जहां बाकी आए चारों लफ्ज कुरान पाक में मौजूद हैं। और फल पकने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं। जना सूरत अल अनाम के बिल्कुल आठवें पारे के एंड पे आता है ये लफ्ज, और जना फलों का निकलना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये जो बात आखिर में किया है इसका भी हुसन देखिएगा, फला तजलू लिल्लाहि अंदादन। ये अंदाद लफ्ज क्या है, निद। देखिए अंदाद कहते हैं वो जो किसी का नेमुल बदल हो, नंबर एक। एक इसकी तारीफ लिखिए, यानी अल्टरनेट किसी का। नद्दा अरबी जुबान में उस ऊंट को कहते हैं जो मुंह उठाए जिधर मर्जी चल पड़े, डायरेक्शन लेस, उसको नहीं पता मुझे किधर जाना है। मिसल और नजीर को कहते हैं निद। एक मौके पे एक शख्स ने नबी सल्लम को कहा कि माशाअल्लाह व माशेता, तो अल्लाह के नबी कांप गए, कहा जालतनी लिल्लाह ही निदा, क्या तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाता है, अल्लाह के बराबर बनाता है, नहीं बल माशाअल्लाह वहदा। ठीक है, अच्छा अब ये बात भी हो गई, लेकिन आप जरा इस रूट के अंदर, इसका रूट क्या होगा, सब बोले मिल गए, नून दाल दाल, कोई इससे मिलता वाला लफ्ज उर्दू में लाएं, फिर मैं आपको रब जोड़ती हूँ कि अरबी जुबान खूबसूरत कितनी है। जी निदा किसको कहते हैं, निदा पुकारने को, तो ये अंदाद में नदा कहां से आ गई, यही रब बताना चाह रही हूं। देखिए लिखिएगा, अंदाद निद से, और निद में आवाज पुकार का मानी है ना, जो अल्लाह के मुकाबले में आवाज बुलंद कर सके उसको निद कहते हैं। आवाज से इसका ताल्लुक है। आप कहेंगे वो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में कहे कि ना रब्बुकुमुल आला, तो जवाब ले लीजिए कि अल्लाह के मुकाबले में हमारा नफ्स आवाज लगाता है, अना रब्बुकुमुल आला। हमारा खानदान कहता है मैं तुम्हारा खानदान हूं तुम्हें किक आउट कर दूंगा, ये भी खुदा बनता है। हमारा माल, हमारी लस्ट, हमारी शहवत, हमारी ख्वाहिशें, डिजायर्स, एक लंबी लिस्ट है खुदाओं की। बस एक रब को अपना मान ले, जब आप उसको छोड़ेंगे तो कोई उसकी जगह मल मारेगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मल मार लेना। आप सीट से जरा हटेंगे ना, कोई दूसरा आके फौरन आपकी अच्छी सीट पर बैठ जाएगा। इसी तरह जब बंदा अल्लाह की बंदगी से जरा सा हटता है, अल्लाह को हटाता है, फौरन या तो उसका नफ्स या शैतान, इबलीस, मुआशरा, खानदान, ये सब कुछ आ जाता है कि आओ जरा मैं तुम्हें खुदा बन के दिखाता हूँ कि करना क्या और कैसे क्या। और वान तुम तालमून, तुम जानते हो। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है, ये कौन से इल्म की बात है, ये वही का इल्म नहीं है, ये फितरत का इल्म है, जबिल्लत का इल्म है, अल्लाह अलस्तु बिरब्बिकुम का जो अल्लाह सुबहाना तला ने पैगाम दिया था ना उसका इल्म है। गोया के अब इसे एक आयत पे आप जरा सी नजरें जमा के देखें, आपने क्या सीखा इसमें से, तौहीद, ईमान बिल्ला, एक पिलर सीख लिया हमने, हमने अपने आज के लेसन का 1/3 कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमें अल्लाह को रब मानने की वजूहात भी समझ आ गई हैं, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या पसंद करता है, उसकी नेमतें क्या, वो भी आ गई, बिछौनों की बातें, उसके तोहफों की बातें, उसने जो कुछ मेरे आपके लिए पैदा किया उसकी बातें। कभी इस नजर से अपने रब को तुम्हें और आप देखें तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह आई लव यू, अल्लाह जी आप जैसा तो कोई है नहीं, ना मुझे कोई चाहिए, कोई बनेगा भी, तो मैं किसी को आपकी जगह आपके बदले में चूज नहीं करूंगी। जब मेरे आपके अंदर इस दर्जे का यकीन हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह सुबहान तआला हमें काफी हो जाता है। और जब आप और मैं इस दर्जे पे अपने रब की बात को मानने के लिए तैयार होते हैं, तो बस वो नवाजता ही नवाजता है। क्या कुछ उसने मेरे आपके लिए नहीं पैदा किया। और ये बादलों का उड़ना हुआ, पूरा कुरान पढ़ा हुआ, हवाले लिखाती जाऊंगी तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन आप इंशाल्लाह इस कुरान में से देखेंगे कि अल्लाह ताला की कायनात पर फैली हुई ये सारी चीजें हैं। अपने आप से पूछिए एक आखिरी सवाल, फिर अगले मौजू पे चलेंगे, मेरा निद कौन है, क्या वाकई में अल्लाह का किसी को शरीक बनाती हूँ। देखिए किसी की सुस्ती, उसका निद अल्लाह के मुकाबले में, किसी की दुनिया की मोहब्बत, परफेक्शनिस्ट होना, सब इधर ही पाना है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी की बेसब्री भी उसका निद है। कौन जन्नत का इंतजार करे, देखेंगे जो आएगी जब आएगी, अभी तो मुझे चाहिए, नाउ, अभी, नाउ और नेवर, ये रवैया। इसी तरह किसी का इस दुनिया पे रीझ जाना ये सब कुछ है। अल्लाह ताला ने मेरे आपके लिए जो सब कुछ पेश किया ना, ये इस बात का तकाजा करता है कि हम अल्लाह ताला से इम्प्रेस भी हों। फिर एक और बात नोट कीजिए कि जब हम बात करते हैं ना जमीन, तो फिर कहते हैं अच्छा जी ना बनाता, कभी सोचा आपने? अच्छा जी अल्लाह ने क्या बना दिया, सूखी रोड़ी जमीन है, पत्थर है, क्या था, फॉर्म बिछा देता। थोड़े से फैक्ट्स हैं, मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन सुनिए, जो लिख सकते हैं लिखें, बाकी बात में सुन के लिख लीजिएगा। कुछ फैक्ट्स आपको इस जमीन के लिखाना चाहती हूँ, बल्कि एक रिपोर्ट है उसी में से पढ़ के सुना देती हूँ। यानी ये जमीन कैसे बनी, साइंस क्या कहती है कि आज से हजारहा सदियों पहले एक बहुत बड़ा सितारा सूरज के करीब से गुजरा, जोरे कशिश से सूरज के चंद टुकड़े कटकर दूर खला में घूमने लगे, इनमें से एक जमीन थी। यानी ये पूरी दुनिया कहते हैं एक बॉल था, बिग बैंग थ्योरी तो सुना ही होगा ना, वही है ये। पूरी दुनिया एकदम जाकर टकराई तो टुकड़े बटे, टुकड़ों में ऐसे ये सारा सोलर सिस्टम बन गया, उसमें से एक जमीन थी। इन टुकड़ों को करीब के सितारों ने खींच कर मुतवाजन कर दिया, यानी कशिश है जो बीच में, उसके अंदर से सब वो कुल्ली फी फलकी यसबहू नली कैफियत है। जमीन की दो हरकतें हैं, एक वो जो अपने मरकज के गिर्द करती है, महवर के गिर्द 24 घंटों में पूरा करती है। इसकी वजह से क्या बनता है, दिन रात, ठीक है, जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन आ जाता है, जो दूसरी तरफ जाता है उधर रात आती है। दूसरी गर्दिश जमीन सूरज के गिर्द करती है, 365 दिनों में एक स्फेयर, एक सर्कल पूरा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन को सूरज से जुदा हुए, अब एक अंदाजा है कि ये दुनिया में जमीन कब बनी, उससे पहले पता नहीं क्या कुछ था, 2 अरब सदियां गुजर गई। लेकिन इन दोनों गर्दिशों में, जमीन का अपने महवर पे और सूरज के गिर्द घूमने में, 1 सेकंड का फर्क नहीं आया 2 अरब सदियों के बावजूद। अब आप कहते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले ये सारी बातें कहां से ढूंढते हैं, या उनको क्या पता है? उनको नहीं पता, आप अपने इस पिछली जिंदगी के 25-30 सालों में कितनी को दफा जमीन को टेढ़ा मेढ़ा होते देख रही हैं। अल्लाह ने इतने प्यार से ये बनाया, अपने गिर्द जमीन 1,000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, 1,000 पर आवर। आप अगर पाकिस्तान में लाहौर से कराची जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि 1,000 मील है। यानी आप अगर उसको जहन में रख लें या कोई भी सोच लें, तो 1 घंटे में आप लाहौर से कराची पहुंच जाए, अगर आप जमीन के जहाज पे बैठे हो। जमीन को इमेजिनेशन में एक जहाज ले आइए। सूरज के गिर्द 68,000 मील फी घंटा के हिसाब से, 68 यानी 68,000 मील एक घंटे में सूरज के गिर्द जमीन चल रही है। अगर इसकी पहली रफ्तार को 10 गुना कम कर दिया जाए, हम कहते नहीं जमीन 1,000 मील से ना चले बल्कि जरा कम हो जाए, 100 से चले, तो शबो रोज 10 गुना लंबे हो जाए। अभी 24 घंटे का ना, तो 240 घंटे का दिन रात हो जाए। जून में 140 घंटे का गर्म दिन जमीन को झुलस कर रख देगा, और जनवरी की इतनी ही तवील रात हर चीज को मुंजमित कर देगी, जमा देगी। और अगर इसे बढ़ा दिया जाए, आप कहते नहीं चले 1,000 से 2,000 मील हो जाए जमीन की स्पीड तेज हो जाए, तो हर शय का वजन कम हो जाएगा। ये आपका मेरा वेट है ना, ये भी जमीन की इन गर्दिशों और कशिश की वजह से होता है। और जब ये रफ्तार 16,200 मील फी घंटा तक पहुंचेगी, तो किसी चीज में कोई वजन ही नहीं रहेगा। यानी अगर जमीन की ये रफ्तार चेंज कर दी जाए, हवा का एक हल्का सा झोंका दरख्तों और मकानों को गिरा देगा, और हॉकी का बॉल हिट होने के बाद हवा में उड़ जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये है भी कदर है, उसका अंदाजा है। अब जरा जुमले को पढ़े कि अल्लाह ने क्या किया, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, जमीन का वजन 5 अरब बिलियन टन है। यानी अगर तराजू में रख के जमीन को तोले, 5 अरब बिलियन टन। एक टन कितना होता है, 40 मन का, और एक मन में 40 किलो, किलो में आगे करें कितने, 5 अरब टन। उफ माय गुडनेस, अकल बंद होती है। अगर आधा होता तो कशिशे सिकल यानी ग्रेविटी निसफ रह जाती और चीजों का वजन आधा हो जाता, और अगर ये वजन दुगना होता तो हर चीज का वजन डबल हो जाता। माइंड ब्लोइंग है कि नहीं, दिमाग घूम जाता है। वल्लाह ही हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। मैं हर जुमले में आपको, मैं ये कोई साइंस नहीं पढ़ा रही इस वक्त, हालांकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ वो रब कितना बड़ा है जिसकी इतनी बड़ी जमीन है। फिर हम उससे नहीं डरते, फिर हमें उसकी चीजें इतनी लो वैल्यू लगती है, डॉलर स्टोर की चीज हमें महंगी लगती है, अल्लाह का रास्ता सस्ता लगता है। फेंको इसको, छोड़ो, और ले आएंगे, जाने दो, जाती है जाने दो, मुझे नहीं चाहिए, कोई और कर लेगा ये काम, मैं नहीं लेती। इतने ना शुक्रे हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह का फजल है, वो रहीम और करीम ना होता तो आज मैं इधर ना बैठी होती। मेरे इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी कि मैं उसकी किताब आपको पढ़ाने बैठ गई। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये उसका करम है कि उसने आपको मुझे यहाँ ला के बैठा हुआ, एक एक करके ऐसा मारे के समंदर में जाके डूबे पड़े होते, हमारी लाश भी ना मिलती, ये उसका करम है। इतना मालिक होकर भी वो हम फिर हमारे गुनाहों पे पर्दे, हमारी पता नहीं किस किस चीज में उसने पर्दे डाले हुए हैं। अब जरा दूसरा भी सुनिए, सूरज के साथ इसका तकाबुल। जमीन सूरज से तकरीबन 9,29,00,000 मील दूर है। आपको पता है कि नॉर्वे पाकिस्तान से कितना दूर है? चलिए लिखें, आप ढूंढ के लाएं कल, जरा सा करके देखें। 8 घंटे में आप जहाज में पहुंचते हैं, उसमें चंद हजार किलोमीटर है, 9,29,00,000 मील दूर है। अगर ये फासला कम होता तो हम गर्मी से मर जाते, और ज्यादा होता तो सर्दी से मर जाते। जमीन कुर्रा, जमीन का रुख आफ्ताब की तरफ बिल्कुल सीधा नहीं, यानी ऐसे सूरज सीधी नहीं है, झुकी हुई, इंक्लाइंड, 23 दर्जे के एंगल से झुकी हुई है। यही झुकाव मौसमों का सबब है। अगर ऐसा ना होता तो हर दिन पिछले दिन जैसा होता, हम सर्दी गर्मी बहार और बरसात के मनाजिर, गजाओं और फलों से महरूम रहते, यानी सारी जिंदगी जहां बैठे हैं वहां का वेदर एक ही जैसा होता। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा गर्मी होती है, और अमेरिका में हमेशा सर्दी होती है, और नॉर्वे में हमेशा बर्फ होती, और पाकिस्तान में हमेशा लोग गर्मी से तड़पते। अल्लाह ताला ने, यानी ये मेरी आंखों के सामने वो पिक्चर्स आ रही हैं जो मैं आपको अपने इमेजिनेशन से, 23 का एंगल जैसे यूं करें ना तो ये ऐसे सीधा होता है, 180, इस तरह कर दें तो 90 है। ये इतनी सी जमीन अपने मरकज पे, ये 23 पे रख दी, अल्लाह ने झुका दी, उसकी वजह से ये मैं और आप 4 सीजन एंजॉय करते हैं। गर्मी आ रही, बरसात आ रही, बहार आ रही, ये हो रही, वो हो रही। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी फला तजलु लिल्लाह अंदादा। अपने निद को ढूंढें और उसको कत्ल कर दें, जिबा करें, कुर्बानियां तो कर दी बकरों की, अपने इन झूठे खुदाओं को मारना है मैंने, आपने जो अना की सूरत में अंदर बैठे हुए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी अकल को अल्लाह के आगे झुका दें। जब दुनिया बनी और जमीन ठंडी हुई तो 2 गैसें थी इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाहम मिलकर हवा में तब्दील हुई। नाइट्रोजन की मिकदार कितनी आपको पता? 2 गैसें हैं हमारी हवा में, 2 बड़ी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78.3%, और ऑक्सीजन उसका ऑपोजिट कर लीजिए तो 20.99 तकरीबन। ऑक्सीजन जलाती है, यानी ऑक्सीजन आग पकड़ती है। अगर फिजा में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती तो पूरी दुनिया में आग लग जाती, आसमानी बिजली के एक शरारे से आग भड़कती, सब जलता। और अगर इससे आधी होती, यानी ऑक्सीजन 20% की बजाय 10% होती, तो हमारे चूल्हों में कभी आग ना जलती। क्या प्यारा निजाम उस मालिक ने बना दिया, हर चीज रखी रखी। और ये तो वो चीजें हैं जो साइंसदानों को नजर आती हैं और जो मुझे आपको दिखती हैं, अगर उसको देखें तो क्या क्या हमारे पास है। अभी भी आप बाहर आते जाते, आजकल की जरा जमीनों को तो देखें, कभी सब्ज है तो कभी स्किन है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरह वाकिया में, अफराई तुम माँ तहरुसून आन तुम तजरऊ न हो अमना नुजारे उन, क्या तुमने कभी अपनी खेतियों पे गौर किया? तुम उसमें से फसलों को उगाते हो कि हम उगाते हैं? ये सब उसकी बातें हैं जो मैं और आप रोज देखते हैं। बातें और बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त तक मेरा गोल क्या है कि हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत में टूट चुका हो, डूब चुका हो। कोई गम, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी आपको याद ही ना रहे अपने मालिक की कुदरतों को देखते हुए। यहां तक हमें तिलावत सुनाएं, आप लोग बिल्कुल इन आयतों में जो कुछ सुना ना इसको ज़हन में रखकर अपने दिल पर लीजिए इसको।
या अय्युहा नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی تو ہم نے صرف زمین پہ غور کیا نا، 6 نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ ایک ایک پہ کریں خود بھی. پانی کیا چیز ہے، کس طرح اللہ نے بنایا. آپ دیکھیے کہ پانی کی تینوں شکلیں ہیں نا، لیکوڈ بھی ہے، گیس بھی بن جاتا ہے اور جم بھی جاتا ہے. اگر آپ اسی کے ساتھ سی فوڈ کو سامنے لے آئیں، یعنی ایک ایک چیز پہ غور کریں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں نا، بس اس پہ غور کریے گا. بچوں کو بھی لے کے بیٹھا کریں، یقین کریں ماں سے پیاری توحید کوئی نہیں سکھا سکتا بچے کو. یہ مائیں بگاڑتی ہیں نا تو بعد میں ٹیچرز کو محنت کرنی پڑتی ہے، فائدے پھر بھی نہیں ہوتے. اگر ماں کا شعور اللہ سے جڑ جائے نا تو واللہ ہی دودھ پیتا بچہ بھی مواحد بن جائے. بڑی مشکل سے ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں واللہ ہی، اور پھر بڑی مشکل لگتی ہے ان کو ٹھیک کرنے میں. جو کر سکے تو ہو جائے، ورنہ نہیں ہوتا.